रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हम नित्य चैतन्य चरितामृत के हमारे 38वें दिवसीय सत्र में। हम अंत्यलीला चर्चा कर रहे हैं और कल हमने दो अध्यायों की चर्चा की, अध्याय 13 और 14। 13वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से महाप्रभु जब भगवान से विरह अनुभव किया करते थे तो उनका शरीर पतला और लंबा हो जाता था, और जब वो उसी अवस्था में सोते थे तो उन्हें जमीन पर वो सोते थे केवल केले के छिलके के ऊपर तो तकलीफ होती थी। तो जगदानंद पंडित और उन्होंने सोचा कि क्यों ना रुई और एक नया वस्त्र लाया जाए और महाप्रभु को दिया जाए, और उन्होंने दिया भी गोविंद को। तो महाप्रभु क्रोधित हो जाते हैं और उसका स्वीकार नहीं करते हैं, और स्वरूप दामोदर फिर दूसरी युक्ति निकाल के जो केवल केले के जो पत्ते होते हैं नाखून से उसे काट के ज्यादा संख्या में उन्हें जो महाप्रभु के बहिर्वस्त्र में बांधकर उसकी एक छोटी सी रजाई जैसा बनाते हैं, उसका फिर महाप्रभु स्वीकार करते हैं। और उसके पश्चात जगदानंद इनका वृंदावन जाने का कई समय से जो है वो मन में था, लेकिन महाप्रभु उन्हें अनुमति नहीं दे रहे थे। तो वो पुनः जब जाते महाप्रभु से अनुमति मांगते हैं तो महाप्रभु कहते हैं कि आप मुझसे क्रोधित हो गए इसलिए जाना चाहते हैं, अभी मत जाओ। तो लेकिन वो कहते कि नहीं, मैं कब से राह दिख रहा था, आप मुझे परमिशन देंगे करके अनुमति देंगे, तो नहीं देते महाप्रभु। फिर जगदानंद पंडित स्वरूप दामोदर से कहते हैं कि कृपया मांगिए, मेरी ओर से प्रस्ताव रखिए। फिर महाप्रभु जो अनुमति दे देते हैं, लेकिन समझा देते हैं कि क्या करना है, कैसे वृंदावन में जाना है। वाराणसी तक जाना है, अकेले जा सकते हैं लेकिन उसके आगे कोई क्षत्रिय रक्षक होना चाहिए, नहीं तो लुटेरों का भय वहां पर रहेगा। और कहा कि यहां वहां व्रजवासियों के संग ज्यादा करो मत, केवल सनातन गोस्वामी के साथ ही दर्शन करो धाम का, और जल्दी आ जाना, बहुत ज्यादा समय तक रुकना नहीं। तो इस प्रकार से वो जाते हैं, वहां पे सनातन गोस्वामी से मिलते हैं। सनातन गोस्वामी उन्हें 12 वनों का वर्णन कराते हैं, दर्शन कराते हैं। और उसके पश्चात जो है वो एक बार जगदानंद सनातन गोस्वामी को प्रसाद के लिए बुलाते तो सनातन गोस्वामी एक लाल वस्त्र माथे पे बांध के गए हुए थे, तो मुकुंद सरस्वती इन्होंने वो लाल वस्त्र उनको दिया था। तो ये पूछते हैं कि ये किसने दिया, तो गए थे मुकुंद सरस्वती ने, तो और गुस्सा हो जाते और हंडी लेके मारने के लिए भागते। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति आपका कितना प्रेम है वो आज यहाँ पर प्रदर्शित किया है आपने, और मैं ये किसी और को दे दूंगा। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जब वो वापस जा रहे होते जगन्नाथपुरी, तब रासस्थली की वालू और पीलू फल, गुंजामाला और गोवर्धन शिला, ऐसे 4 वस्तुएं देते हैं और फिर वो आ जाते हैं वापस। सारे भक्तों को उल्लास हो जाता है जगन्नाथपुरी में, सारे भेंट वस्तुएं महाप्रभु अपने पास रखते हैं और पीलू के फल बाकी लोगों को बांट देते हैं। कुछ लोग जानते थे कैसे खाना है चूस कर, कुछ लोग नहीं जानते थे, वो चबा के खाए, उनकी जिह्वा जल गई और ऐसी एक पीलू की एक लीला हो गई वहां पर। तो उसका वर्णन हमने किया था। और ये जगदानंद पंडित का वृंदावन गमन एक वर्णन आया है 13वें अध्याय में। दूसरा वर्णन आता है जब महाप्रभु ऐसे यमेश्वर टोटा जा रहे थे, एक देवदासी गान कर रही थी और क्योंकि वो जो गान था वो गीत गोविंद का एक पद था, इसलिए महाप्रभु आकर्षित हो जाते और भागते हैं। तो उन्हें पता नहीं कि स्त्री गा रहे कि पुरुष गा रहे, और जब गोविंद उनके पीछे भागते और उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चिल्लाते कि स्त्री गा रही है, तो महाप्रभु कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया आपने मेरी जीवन की रक्षा की है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ये एक वृत्तांत हमने 13वें अध्याय में देखा था। और उसके पश्चात रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये किस प्रकार से जो है वो वाराणसी से महाप्रभु को मिलने के लिए निकले हुए हैं। रास्ते में उन्हें रामदास विश्वास बंगाल में मिल जाते हैं। रामदास विश्वास जो होते हैं वो बहुत बड़े विद्वान पंडित होते हैं, शिक्षक होते हैं, काव्य प्रकाश नाम के ग्रंथ को वो पढ़ाते रहते हैं, लेकिन राम का नाम भी जप करते रहते हैं लेकिन मुमुक्षु रहते हैं। अंदर में उन्हें जो है वो निर्विशेषवादी थे और भगवान का दिव्य रूप इसके ऊपर उनका विश्वास नहीं था, इसलिए महाप्रभु की कृपा तो उन्हें नहीं मिली। लेकिन जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वो जब पुरी में आते हैं तो महाप्रभु की प्रचुर मात्रा में उन्हें कृपा मिलती है। वो 8 महीने तक वहां पर रहते हैं और महाप्रभु जो है वो उन्हें आज्ञा देते हैं कि आप विवाह नहीं करना और घर पे जाओ, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करो। इस प्रकार से वो वहां पर सेवा करते हैं और जब वृद्ध माता पिता 4 साल के बाद देहावसन उनका हो जाता है तो पुनः जगन्नाथपुरी में आते हैं, महाप्रभु से मिलते हैं और पुनः 8 महीने के लिए वहां पर रहते हैं। और फिर वो जो है वो वहां से पुनः महाप्रभु आज्ञा देते हैं उन्हें कि आप जो है वो वृंदावन जाइए और रूप सनातनी से मिलिए। तो वृंदावन में वो जाते हैं, रूप सनातन से मिलते हैं और हमने देखा था कि किस प्रकार से वो भागवत का पाठ निरंतर किया करते थे जो महाप्रभु ने आज्ञा दी थी, और अलग अलग 3-4 रागों में श्रीमद् भागवत का वो पाठ किया करते थे और सुनाते थे और रूप सनातन उनके साथ में जो है वो आनंद लिया करते थे। तो ये जो है वो हमने 13वें अध्याय में वर्णन देखा था। और उसके पश्चात हमने और एक अध्याय कल लिया था, 14वां अध्याय, महाप्रभु का विरह भाव। तो उसमें किस प्रकार से महाप्रभु जब एक बार दर्शन के लिए जगन्नाथ मंदिर में गए थे तो एक उड़िया महिला महाप्रभु जब सिंहद्वार से अंदर जाकर गरुड़ स्तंभ से जब दर्शन ले रहे थे, लाखों लोग सामने थे, तो उड़िया महिला दर्शन नहीं ले पा रही थी, तो महाप्रभु के कंधे के ऊपर चढ़कर गरुड़ स्तंभ को पकड़कर वो दर्शन ले रही थी। गोविंद डांट के उन्हें नीचे उतारने का प्रयास करता है लेकिन महाप्रभु गोविंद को ही चिल्लाते हैं, हे आदिवासी तू ऐसा मत कर, क्योंकि वो जो है वो जगन्नाथ जी के प्रति इतना उनका उत्कंठा है जगन्नाथ जी का दर्शन करने का, ये आरती मतलब ये उत्कंठा भगवान ने मुझे नहीं दी हुई है केवल उन्हें दी है, इसलिए वंदी इहार पाए, मैं इनके चरणों को वंदना करता हूं और जगन्नाथ मुझे जो है वो ऐसी आरती प्रदान करे। तो ये हमने कल देखा था। और किस प्रकार से हमने देखा था, दर्शन जगन्नाथ जी का जब ले रहे थे भगवान तो मुरली वादक भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन करते हैं और वहां से जब वापस आते हैं तो रात के समय वो स्मरण आता है उन्हें, वो ठीक से सो नहीं पाते और रात भर कीर्तन करते हैं और बाद में जो है वहां से रूम से गंभीरा से चले जाते हैं और सिंहद्वार में बाकी भक्त उन्हें खोज करते हैं। और लेकिन उस समय जब पाते तो उनके शरीर के जो है वो किस प्रकार से बहुत लंबा हो गया है, सारे ज्वाइंट्स जो है वो लंबे लंबे हो गए हैं, पसीना आ रहा है, सांस नहीं चल रही है, अचेत अवस्था में, तो उसमें कीर्तन करते हैं और महाप्रभु को सचेत करते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु पुनः वापस आते हैं। और एक बार जब वो समुद्र स्नान करने के लिए जा रहे थे तब वो एक पर्वत देखते हैं, चटक पर्वत, और उसे गोवर्धन कहके उसके पीछे भागने लगते हैं। और फिर जो है वो किस प्रकार से उन्होंने कृष्ण के दिव्य लीला में मानो प्रवेश कर लिया था और राधा कृष्ण का दर्शन हो ही रहा था उन्हें, तो लेकिन जब स्वरूप दामोदर ये सब आदि पुनः जब कीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं तब जो है वो होश हवाश में आ जाते हैं और फिर समुद्र स्नान करके उन्हें वापस लाया जाता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु के ये जो है वो विलाप की लीलाएं चलती है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं हमारा अध्याय 15 जिसका शीर्षक है महाप्रभु का दिव्य उन्माद। बहुत सुंदर अध्याय है ये। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। पहले श्लोक में कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर बताते हैं, दुर्ग में कृष्ण भावाब्धौ निमग्नो उन्मग्न चेतसा गौरेण हरिणा प्रेम मर्यादा भूरी दर्शिता। दुर्गमे कृष्ण भाव अब्धौ, जो भगवान के प्रति जो दिव्य भाव है, भाव वो उनका एक समुद्र है, कृष्ण के प्रति जो भाव है उन भाव का एक समुद्र है और वो बहुत ही कठिन है समझना। दुर्गमे कृष्ण भावाब्धौ निमग्न उन्मग्न चेतसा, और उस भाव में जो है वो निमग्न है और उन्मत्त चित्त है उनका, कौन? गवरेण हरिणा, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हरि है, क्या किया उसने में वो निमग्न है, उसका आस्वादन कर रहे और प्रेम मर्यादा भूरी दर्शिता, प्रेम की सर्वोच्च सीमा क्या होती है उसका उन्होंने इस जगत को प्रकटीकरण किया है, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। तो इस प्रकार से जो है कविराज गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। ऐ मत महाप्रभु रात्रि दिवसे आत्मस्फूर्ति नाही कृष्ण भावावेशे, इस प्रकार से जो है वो महाप्रभु भावावेश में रहा करते थे और रात और दिन बिताते थे। दिन के समय में तो जगन्नाथ जी का दर्शन, नृत्य, कीर्तन, प्रसाद आदि क्रियाएं, स्नान आदि क्रियाएं किया करते थे, और रात्रि के समय में स्वरूप दामोदर और राय रामानंद इनके साथ बैठ के केवल कृष्ण लीला कथा उसका जो है वो चर्चा किया करते थे, बाकी कुछ जगह पर उनका मन नहीं लगता था। बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु तीन अवस्थाओं में रहा करते थे। सबसे पहला उनका अवस्था था वो है भावमग्न अवस्था, मतलब दिव्य भाव में उन्मादित वो मग्न अवस्था में रहते थे, जहां वो कृष्ण और राधारानी इस प्रकार से उनके लीलाओं में निमग्न रहा करते थे, वो है दिव्य भावावस्था। दूसरी थी उनकी अर्धबाह्य अवस्था, वो आधा सचेत और आधा अचेत इस प्रकार से होते थे। और तीसरी है पूर्ण बाह्य अवस्था, पूर्ण बाह्य मतलब जिस प्रकार से हमारी पूर्ण बाह्य चेतना होती है कि हम कार्य कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, उसके बारे में सचेत रहते हैं, वो है पूर्ण बाह्य अवस्था। और कविराज गोस्वामी कहते हैं उनका जो बाकी क्रियाकलाप थे वो तो केवल ऐसे ही शरीर धर्म से चला करते थे, लेकिन उनका प्रमुख कार्य था वो था लीलाओं का आस्वादन और उसमें मग्न रहना। स्नान दर्शन भोजन देह स्वभावे होय कुमारेर चाकये न सतत फिराए, कहते हैं कि जैसे कुम्हार का चाक घूमता है ना, कुम्हार का चाक हमने देखा होगा और उसके ऊपर जो मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है, तो कुम्हार का चाक एक बार घुमा दिया जाए तो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो उसी प्रकार से महाप्रभु का जो शारीरिक कर्म था, स्नान दर्शन भोजन देह स्वभावे है, ये अपने आप कुम्हार का चाक जैसे घूमता था वैसे अपने आप हो जाता था, उनका उसकी तरफ ध्यान भी नहीं रहा करता था। जैसे कुम्हार का ध्यान नहीं रहता है चक्का फिर रहा है, उसका ध्यान होता है वो बर्तन को आकार देने में और बीच में एक आधी बार घुमा देता है तो अपने आप घूमता रहता है। तो उसी प्रकार से महाप्रभु का स्नान भोजन ये सब जो है वो केवल जो है वो शरीर के देह धर्म के हिसाब से हुआ करता था। एक बार की बात बताते हैं कविराज गोस्वामी। एक दिन करे न प्रभु जगन्नाथ दर्शन, जगन्नाथे देखे साक्षात व्रजेंद्र नंदन। महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन करते करते उन्हें साक्षात कृष्ण मुरली बजाने वाले व्रजेंद्र नंदन उनका दर्शन हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के पांच गुण महाप्रभु के पांच इंद्रियों को मानो आकर्षित कर रहे थे। तो सबसे पहले ये पांच जो है वो हमें हमें हमारे स्तर पे समझना चाहिए, बाद में हम चैतन्य महाप्रभु के स्तर पे चले जाएंगे। पांच तन्मात्राएं होती है जिन्हें कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये पांच तन्मात्राएं होती है जो 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 इस सृष्टि में रहती है। जैसे पंच महाभूत होते हैं, हमारी पंच इंद्रियां होती है, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत और ये पांच तन्मात्राएं करके 20 वस्तुएं बनती है। तो ये पांच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और हमारी पांच इंद्रियां जो इनके साथ आस्वादन करती है, हमारा नाक, हमारी जिह्वा, हमारी आंखें, हमारे कान और हमारी त्वचा। तो ये है हमारी पांच इंद्रियां जो इन पांच तन्मात्राओं का आस्वादन करती है। जैसे नाक के लिए गंध हो गया, कान के लिए शब्द हो गए, जिह्वा के लिए रस हो गया, त्वचा के लिए स्पर्श हो गया और क्या बचता है, आंख के लिए रूप हो गया। तो इस प्रकार से पांच तन्मात्राएं और पांच हमारे इंद्रियां, इनका जो है वो संयोग से जो संयोग होता है और इससे हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है और रसास्वादन भी होता है किसी वस्तु का। तो मनुष्य स्तर पे हमारे सारे इंद्रियां इन तन्मात्राओं के पीछे भागती रहती है और किसके लिए, स्वयं की संतुष्टि के लिए। और उतना उसना उतना उस, इसे कहते हैं हमारे ये पांच इंद्रिय है और इनका तृप्त कराना चाहते हैं, इसलिए उसे कहते हैं इंद्रिय तृप्ति। तो इंद्रिय तृप्ति शब्द कहां से आया है, हमारे इंद्रिय है पांच इंद्रिय और वो तन्मात्राओं के साथ संयोग से तृप्त करना चाहते हैं, उसे कहते हैं इंद्रिय तृप्ति। तो हम इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते रहते हैं और ये पांच जो है वो हमें खींचते रहते हैं अलग अलग दिशाओं में। आंख कहता है चलो आज ये देखो, कान कहता है चलो आज इसे सुनो, जिह्वा कहती है चलो आज हमें इसे चखना है, और त्वचा कहती है आज ये नया स्पर्श मुझे अनुभव करना है। तो इस प्रकार से हमारी पांचों इंद्रियां पांच अलग अलग दिशा में खींचती रहती है। और इस प्रकार से एक हितोपदेश में श्लोक आता है, पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन हता पंच भिरेव्य पंच एकम प्रमाति सकथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव्य पंच। तो इसमें बताया गया है कि ये पांच पशु पक्षियों का उदाहरण दिया गया है, जिसमें ये पांच पशु पक्षी अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। पतंग सबसे पहला है जो मौत, मतलब बारिश के दिन में वो कीड़े आते हैं, वो अग्नि की लौ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वो अपने आंखों से आकर्षित हो जाते हैं और उसमें अपनी जान गंवा बैठते हैं। भृंग मतलब भौरा, वो भी फूल में अपने नासिका को सुगंध लेने के लिए बैठ जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब शाम हो गई, सूरज ढल गया, कमल बंद हो गया और अपनी जान वहां पे गंवा बैठता है। दूसरा आता है हिरन, हिरन जो है वो भागता रहता है, इतना भाग सकता है तेजी से, वो शेर से भी अपनी जान बचा लेता है, लेकिन जब शिकारी जो है वो बहुत अच्छी सी धुन बजाता है तो वो स्तब्ध होकर खड़ा रहता है और कानों को तृप्त करने के पीछे रुक जाता है और वहां पे जो है वो उसे छेदन किया जाता है उसका हृदय शिकारी के द्वारा। अगला है मीन, मीन करता था मछली, मछली जो है पानी के अंदर भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है मछली के लिए, लेकिन जो मछुआरा है वो अलग कुछ डाल देता है, बेट जिसे कहते हैं अलग उसे खाने के लिए, और जो मछली है वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और उसका भी जो है वो अपनी जान गंवा बैठती है। और अगला बचता है हाथी, हाथी जो है वो अपने स्पर्श इंद्रियों के द्वारा पकड़ा जाता है, जो तो मादा हाथी का स्पर्श करा के उसे लेके जाया जाता है और नीचे गड्ढा किया रहता है, उसमें जाली रहता है और उसके अंदर जो है वो भागते भागते जाता है उस स्पर्श को पुनः प्राप्त करने के लिए और पकड़ा जाता है और फिर उसे सर्कस में लेके जाया जाता है। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन हता पंच भिरेव्य पंच, ये पांचों जो है वो अपने एक एक इंद्रियों की तृप्ति के लिए भाग रहे हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति है जो पांचों के पांचों उसमें प्रबल है और पांचों के पांचों उसे भगाते हैं, वो कौन है, वो मनुष्य। यह सेवते पंच भिरेव्य पंच, जो पांचों का सेवन करना चाहता है। तो इस प्रकार से ये पांच इंद्रियां हमारे इन पांच तन्मात्राओं के साथ स्पर्श करा के तृप्त होना चाहती है, लेकिन वो तृप्त तो नहीं हो पाती, उल्टी अपनी जान गंवा बैठती है। तो अभी यहां पर जो हम लोग देखने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच दिव्य गुण, और चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही दर्शन देखा जगन्नाथ जी का, उन्हें कृष्ण का स्मरण हुआ और मानो कृष्ण व्रजेंद्र नंदन कृष्ण को देख रहे थे, और उनकी दशा ऐसी हो जाती है कि उनकी पांचों इंद्रियां और भगवान के ये पांचों शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो मिल जाते हैं और अवस्था ऐसी बिकट है। महाप्रभु बताते हैं कि मानो मेरा मन एक घोड़ा है और मन एक घोड़ा है और ये पांचों इंद्रिया इस घोड़े के ऊपर सवार हो रही है, तो पांचों इंद्रिया इस घोड़े के ऊपर सवार हो जाती है और पांचों अलग अलग दिशा में भगाती है इस घोड़े को, तो बेचारे घोड़े का क्या हो जाएगा, तो बेचारा घोड़ा अचेत होके गिर जाता है। तो ऐसे अभी महाप्रभु ने यह दर्शन लिया है और उस दिव्य दर्शन को लेके महाप्रभु अचेत अवस्था में गिर जाते हैं। कितना भी स्वरूप दामोदर आदि सब थे, उन्हें पता था कीर्तन किया जाता है तो महाप्रभु सचेत हो जाते हैं, काफी समय कीर्तन किया लेकिन महाप्रभु जो है वो सचेत अवस्था में नहीं आते हैं, तो सारे भक्त उन्हें उठाकर घर पे लेके आते हैं। और जब घर पे लाया जाता है तब महाप्रभु अर्धबाह्य अवस्था में आ जाते हैं थोड़े, और स्वरूप दामोदर और राय रामानंद इनको गले गले बिलक के रोने लगते हैं, क्योंकि कृष्ण के साथ उन्हें विरह महसूस हो रहा था। जैसे एक नवविवाहित वधू जो होती है, जब उसे विदाई देने का समय आता है, आपने भी देखा होगा शादी में, तो वो नवविवाहित वधू जो है वो अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई बहन सहेलियां इनसे अभी विदा लेने वाली है और कई नए घर पे जाने वाली है, तो उससे जो है वो उनका विरह उसे सहन नहीं होता और गले बिलक के वो लोग रोते हैं। मेरी बहन की शादी में जब मैं था तो मैंने देखा था वो सब दृश्य, सारे रोते हैं शादी शादी होने के बाद, अरेंज मैरिज में ऐसा होता है नॉर्मली तो गले बिलक कर रोया जाता है, विरह सहन नहीं हो रहा है इसलिए सब रोते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में प्रथा थी कि लड़की की सहेलियां भी जो है उसके साथ में जाया करती थी कुछ दिन के लिए, ताकि उसे सांत्वना दे, उसे उसे जो है वो मैकी की ज्यादा याद नहीं आए। तो इस प्रकार से स्वरूप दामोदर और राय रामानंद ये जो है वो महाप्रभु को सांत्वना दे रहे थे और महाप्रभु उनसे गले बिलक कर रोते है। स्वरूप रामानंद ए द्विजन लैया विलाप करें दुहार कंठे ते धरिया, कंठ पकड़ पकड़ कर जो है महाप्रभु रो रहे होते हैं। फिर राधा रानी जो भगवान कृष्ण को नहीं मिल पा रही है इसलिए जो व्याकुलता प्रस्तुत करती है विशाखा देवी को, तो विशाखा देवी का राधा कृष्ण लीलाओं में एक विशेष स्थान है। वो हमेशा राधा और कृष्ण इनको मिलाने का प्रयास करती रहती है। यदि राधा रानी मान लीला करती है तो कुछ ना कुछ प्रकार से कृष्ण से मिलाना चाहती है, और जब कृष्ण दूर होते हैं और राधा रानी वियोग में है तो राधा रानी विशाखा के साथ जो है वो बातचीत करती है और विशाखा उनका मन बहलाती है। तो इस प्रकार से जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण से विरह अनुभव करती है तब वो विशाखा से कुछ बातचीत करती है। वही श्लोक जो राधा रानी विशाखा से कहती है वही श्लोक महाप्रभु उच्चारण करते हैं और राय रामानंद और स्वरूप दामोदर उनको वो व्याख्या सुनाते हैं। तो कविराज गोस्वामी ने और एक बहुत सुंदर किताब लिखी है, जैसे चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी द्वारा लिखी थी, सारे भक्त उसका आस्वादन कर रहे, वैसे उन्होंने राधा कृष्ण लीलाओं के ऊपर और एक किताब लिखी है जिसका नाम है गोविंद लीलामृत। उस गोविंद लीलामृत का एक श्लोक यहाँ पे महाप्रभु जो है वो बताते हैं और उसका बंगाली में कई सारे श्लोकों में उसका अर्थ समझाते हैं। तो वो संस्कृत श्लोक हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे श्लोक 15 से आगे जो है वो इनका वर्णन आता है। तो क्या चल रहा है अभी, राधा रानी अपनी अवस्था विशाखा देवी को बता रही है और मतलब चैतन्य महाप्रभु वही अवस्था से जा रहे हैं। तो जो मैंने मन और घोड़ों का उदाहरण दिया वही उदाहरण अभी श्रीमती राधा रानी विशाखा देवी के सामने प्रस्तुत करती है। कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्य अधर रस यार माधुर्य कह ननायाय देखे लोभे पंच जन एक अश्व मोर मन चढ़ी पंच पांच दिके धाय। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सुंदर ये लय है। कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्य अधर रस, ये कृष्ण के पांच गुण बताए गए। कृष्ण रूप शब्द स्पर्श सौरभ्य का अर्थ है गंध और उनका अधर रस मतलब रस। यार माधुर्य कह नना याय, इनकी मधुरता का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। देखे लोभे पंच जन, जब इन्हें देख लेता है तो पांच जन मतलब हमारी पांच इंद्रिया, राधारानी कहती है मेरी पांच इंद्रिया उनके तरफ आकर्षित हो जाती है। और एक अश्व मोर मन, मेरा मन घोड़ा तो एक ही है मेरे पास, चढ़ी पंच पांच दिखे धाय, ये पांच इंद्रिया इस एक मन रूपी घोड़े के ऊपर सवार हो जाती है और पांच अलग अलग दिशाओं में भागना का प्रयास करती है। सखी है सुन मोर दुखे र कारण, हे सखी हे विशाखे मेरे दुख का कारण अभी आप सुनो। मोर पंच इंद्रिय गण महालंपट दस्यु गण सबे कहे हर पर धन, ये जो पांच लोग है ये पांच पंचेंद्रिया जो है ये बहुत कपटी है और ये जो है वो लंपट कहा गया इन्हें मतलब ये असंयम, इनका अपने ऊपर संयम नहीं है और क्या करते हैं सब कहे, क्या कह रहे सब लोग, हर पर धन दूसरे का धन लूटो मतलब किसका, कृष्ण का। जो कृष्ण के जो पांच गुण है वो उनका अद्भुत मधुरिमा है और उनको जाके लूटो ऐसे ये पांच मेरे इंद्रिया कह रहे हैं। एक अश्व एक क्षण पांच पांच दिके टाने एक मन कांदी ते याय, एक काल सब टाने गेले घोड़ार पराने एई दुख सहन ना याय। एक अश्व एक क्षण, अरे एक अश्व है घोड़ा एक है, पांच जन इसके ऊपर बैठ जाएंगे और पांच अलग अलग दिशा में जाएंगे तो घोड़े का क्या हो जाएगा। ए मन कांदी ते याय, घोड़ा रो रहा है मतलब मेरा मन अभी रो रहा है। एक काल सबेटाने गेल घोड़ार पर आने, सारे एक साथ खींच रहे, ये खींच रहा है वहां खींच रहा है, कृष्ण के शब्द की तरफ आकर्षित हो रहा है मेरे कान, कृष्ण के रूप की तरफ आकर्षित हो रहे मेरी आंखें, सारे अलग अलग दिशाओं में खींच रहे और हो क्या जा रहा है बेचारा घोड़ा, गेल घोड़ार पर आने घोड़ा मर गया। और क्या हो गया, ए दुख सहन ना याय, मैं इस दुख को सहन नहीं कर पा रही हूं। और अभी ये जो सर्वाकर्षक कृष्ण, उनका वर्णन किया गया है, इंद्रिय मेरे इंद्रियों ने घोड़े को मार दिया है, लेकिन मैं इंद्रियों को दोष देती हूं जो इसके घोड़े के ऊपर सवार है। क्या इंद्रिया दोषी है वास्तव में? बिल्कुल नहीं। ये इसमें इंद्रियों का क्या दोष, वो तो सारे कृष्ण के पांच दिव्य गुणों का दोष है जो मेरे पांच इंद्रियों को आकर्षित करके हरना चाहते हैं। इंद्रिय न करी रोष यहां सबार कहा दोष, कृष्ण रूपाधीर महा आकर्षण, रूपाधि पांच पांच चेटाने गेल घोड़ार पराने, मोर देह नर है जीवन। मेरे इंद्रियों का कुछ दोष नहीं है, यहां सबार कहा दोष, क्या दोष है इनका? कृष्ण रूपाधीर महा आकर्षण, कृष्ण का जो है वो दिव्य आकर्षण, दिव्य स्वरूप है, उसका दोष है, वो इन्हें खींच लेता है। रूपाधि पांचों पांचे टाने, पांच दिशाओं में खींचता जाता है, गेला घोड़ार पर आने, मेरा मन रूपी घोड़ा उसका प्राण चला गया है, मोर देह नार है जीवन, मेरा भी जीवन ही नहीं रह रहा है। और अभी ये जो पांच जो चीजें खींच रही है उनका वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहला कृष्ण के दिव्य रूप का वर्णन, जो रूप क्या कैसे खींच रहा है। कृष्ण रूपामृत सिंधु तहरत रंग बिंदु, एक बिंदु जगत डुबाय, त्रिजगत यत नारी तार चित्त उच्च गिरी, तहा डुबाय आगे उठी धाय। कृष्ण रूपामृत सिंधु, कृष्ण जो है वो रूप अमृत के सिंधु है, और तहार तरंग बिंदु, उनके तरंगों की एक बूंद जो है वो एक बिंदु जगत डुबाए, उनके तरंगों की एक बूंद सारे जगत को डुबाने के लिए काफी है। और त्रिजगत यत नारी, तीनों लोकों में जितनी सारी स्त्रियां हैं, तार चित्त उच्च गिरी, जो अपने आप को कोई योगी नहीं समझती होगी और कहती है कि मुझ पे कुछ असर नहीं होगा इस रूप का, उसको वो पहाड़ के रूप जैसा चित्त है उनका, और एक बूंद आती है कृष्ण के रूप की और उसको लांग के आगे चले जाती है। तहां डुबाए आंखें उठी धाय, उसे भी डुबा देती है। मतलब कोई ऐसा इस संसार में नहीं है जो कृष्ण के रूप को देखकर उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाएगा। अभी कृष्ण के शब्द, ये तो हो गया रूप, अभी कृष्ण के शब्द कैसे है। कृष्ण रवचन माधुरी नाना रस नर्म धारी, तार अन्याय कथन ना याय, जगते रनारी काने माधुरी गुणे बांधी टाने, टाना टानी कानेर प्राण या। कृष्ण रवचन माधुरी, भगवान श्री कृष्ण के वचन कर्णों के लिए मानो इतने अमृत के समान है। नाना रस नर्म धारी, और उनके खास करके जो परिहास करने वाले शब्द है वो तो और भी मधुर। तार अन्याय कथन ना याय, वो शब्दों का अन्याय, क्या हमारे ऊपर अन्याय करते हैं उसका तो बारे में मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। जगतेर नारी काणे माधुरी गुणे बांधी टाने, टाने करते हैं खींचना, जगतेर नारी सारे जगत के नारियों के कान के अंदर घुसते हैं और खींचते हैं ऐसे जोर से, टाना टानी, और इस खींचा तानी में जो है वो कान के प्राण चले जाते हैं हमारे। तो इस प्रकार से कृष्ण के परिहास में शब्द जो है वो कानों को खींचते और हमारे कान के प्राण चले गए। तो एक तो घोड़ा भी चला गया है अभी मन रूपी, कान भी चले गए और आंख तो केवल उसके रूप को तरफ जा रही है, और अभी कृष्ण के स्पर्श उसका वर्णन करते है। कृष्ण अंग सुशीतल की कहिमु तार बल, छटाय जिने कोटिंदु चंदन, सशैल नारी रवक्ष तहा आकर्षिते दक्ष, आकर्षये नारी गण मन। कृष्ण अंग सुशीतल, भगवान श्री कृष्ण का जो अंग है वो अतीव सुशीतल, बिल्कुल ही शीतल है। कि कही मु तार बल, उसके बल के बारे में मैं क्या कहूं। छटाय जिने कोटिंदु चंदन, कोटि चंद्रमा, चंद्रमा को शीतल माना गया है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंदन इस जगत में शीतल माना जाता है। चंदन यात्रा में हम भगवान को चंदन लगाते हैं, तो चंदन इस संसार में सबसे शीतल है, और चंदन से भी शीतल है चंद्रमा, चंद्रमा और भी अधिक शीतल है। तो कहते हैं कि चंदन तो छोड़ दो, कोटिंदु, कोटि इंदु, इंदु मतलब चंद्र, कोटि चंद्रमाओं और सारे जगत का चंदन उसकी शीतलता को भी पार कर देता है कृष्ण का दिव्य स्पर्श, इतना शीतल है, और हमारे वक्षों के आकर्षित कर लेता है, और हमें जब आलिंगन करते हैं आकर्षे नारी गण मन, सबका मन जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ऐसा है भगवान का दिव्य स्पर्श। और कृष्ण का गंध कैसा है। कृष्णांग सौरभ्य भर मृग मद मद हर नीलोत्पलेर हरे गर्वधन जगत नारी रनासा तार भीते पाते वासा नारी गणे करे आकर्षण। कृष्णांग सौरभ्य भर, कृष्ण का गंध जो है वो कैसा है, मृग मद मद हर, जो कस्तूरी, मृग मद मतलब कस्तूरी, कस्तूरी को भी जो अपना जो अहंकार है उसका भी मद को हरा देता है, ऐसा है भगवान का दिव्य गंध। नीलोत्पलेर हरे गर्वधन, नील उत्पल मतलब नीला कमल, इस संसार में नीला कमल बहुत ही सुगंधी है और बहुत ही सुंदर है ऐसा माना जाता है। तो जो नीला उत्पल है, जो नीला कमल है, उसके भी जो उसे भी जो गर्व हुआ है कि मैं सबसे सुगंधी हूं, उस गंध उसके गर्व को भी हरण करने वाला कृष्ण का दिव्य गंध है। जगत नारी रनासा, सारे जगत के नारियों के नथनों में तार भीतर पीते वासा, उनके नासिका के भीतर वो गंध वास करके रह रहा है। नारी गणे करे आकर्षण, और सबको वो आकर्षित कर लेते हैं अपनी ओर। और जो रस रस रसना भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अधर रस, कृष्ण र अधरा मृत ताते कर्पूर मंद स्मित स्वमाधुर्य हरे नारी मन अन्यत्र छाड़ा यलोभ ना पाइले मने क्षोभ व्रज नारी गणेर मूलधन। कृष्णेर अधरामृत, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अधरामृत मतलब उनके ओठों का रस। ताते कर्पूर मंद स्मित, और उन पर जो स्मित मुस्कान है वो मानो उस रस में कर्पूर मिलाने के समान उसकी मधुरी को और बढ़ा रही है। स्वमाधुर्य हरे नारी मन, और उस मधुरता से सारे नारियों के मन को हर लेते हैं। अन्यत्र छाड़ा यह लोभ, बाकी सारे लोभों को वो छुड़ा देता है। ना पाइले मने क्षोभ, यदि ये रस नहीं प्राप्त होता है तो मन क्षुब्ध हो जाता है। व्रज नारी गणेर मूल धन, सारे व्रजांगनाओं के जो है वो मूल धन, ये भगवान श्री कृष्ण का अधरामृत का रस है। एत कही गौर हरि दुई जनार कंठ धरी कहे सुन स्वरूप राम राय कहां करो कहां याओ कहां गेले कृष्ण पाओ दुहे मोरे कह से उपाय। अभी महाप्रभु अपनी स्वयं की व्यथा बता रहे, ये राधारणी का श्लोक विशाखा ने जो सुनाया वही महाप्रभु अपनी व्यथा बता रहे कि ये मेरे पांच इंद्रियां कृष्ण के दिव्य पांच रसों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और प्राण चला जा रहा है। ये तो कही गौरहरी दुई जनार कंठ धरी, ये गौरहरी कह रहे हैं और स्वरूप दामोदर और राय रामन इनके कंठ पकड़ के कहते हैं कि सुन स्वरूप राम राय, आप सुनिए, क्या कहां करूं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां जाऊं, कहां गेले कृष्ण पाऊं, कहां जाकर मैं कृष्ण को पुनः प्राप्त कर सकते हूं। दुहे मोरे कह से उपाय, आप दोनों मुझे उपाय बताइए, कुछ करूं मैं, कहां जाऊं। ए मत गौर प्रभु प्रतिदिने दिने विलाप करें स्वरूप रामानंद सने। इस प्रकार से महाप्रभु जो है वो हर रोज उनका यही कार्य था और विलाप किया करते थे। और ये दोनों स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ये उन्हें क्या सुनाते थे, कर्णामृत विद्यापति श्री गीत गोविंद इहार श्लोक गीते प्रभुर कराय आनंद। तीन गीत सुनाया करते थे, सबसे पहले कृष्ण कर्णामृत जो बिल्वा मंगल ठाकुर द्वारा रचित है, दूसरा है विद्यापति, इन्होंने जो रचना की है उसको सुनाते थे, और गीत गोविंद जो जयदेव गोस्वामी इन्होंने रचना की थी उसे जो है वो सुनाया करते थे। तो इस प्रकार से एक दिन अभी महाप्रभु समुद्र दर्शन के लिए जा रहे होते हैं और समुद्र दर्शन के लिए जाते जाते पुष्प उद्यान आ जाता है, और महाप्रभु जैसे ही कुछ पर्वत देखते, चटक पर्वत देखते थे तो गोवर्धन की स्मरण होता था, कुछ जलाशय देखते थे तो यमुना का स्मरण होता था, और कुछ पुष्पोद्यान देखते थे तो वृंदावन का स्मरण होता था। एक दिन महाप्रभु समुद्र तीरे आईते पुष्पेर उद्यान तथा देखे न अचंबिते, अचानक उन्होंने जो है वो पुष्पों का उद्यान देखा और उसे वृंदावन समझ के महाप्रभु उसके अंदर चले गए भागते 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 भागते। और कृष्ण रासस्थली से श्रीमती राधा रानी को लेके अप्रकट हो जाते हैं, और जो सारी गोपियां थी वो गोपियां भी कृष्ण को ढूंढ रही है, और चैतन्य महाप्रभु अपने आप को उन गोपियों के साथ मिला दे रहे हैं और कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कहां गए कृष्ण, कहां गए कृष्ण। और कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वो बाकी सारे जो वृक्ष है वहां पर उन्हें पूछ रहे, क्या पूछते हैं वो, अम्र पनस पियाल जम्बू को विदार तीर्थवासी सबे कर कर पर उपकार। ये सारे वृक्षों को पूछते हैं, आम्र वृक्ष, हे आम्र वृक्ष, हे फनस के वृक्ष, हे जम्बू के वृक्ष, हे कोविदार वृक्ष, आप सब तीर्थ में रहने वाले हैं, तीर्थवासी हैं, कर पर उपकार, आप हमारे ऊपर उपकार करो। क्या करो? कृष्ण तोमर यहाँ आईला, पाईला दर्शन, कृष्ण यहाँ पे आया, आपने दर्शन किया उनका। कृष्ण रे उद्देश्य कही राख जीवन, कृष्ण कहाँ गए कृपया आप हमें बताइए, है वृक्षों और हमारे जीवन को बचाओ, हमारे हमारे जीवन को राखो, रक्षा करो, कहाँ गए कृष्ण? उन्हें उत्तर नहीं मिलता है, वृक्ष ने उत्तर नहीं दिया। तो गोपियां क्या सोचती है? उत्तर न पाइया पुनः करे अनुमान, ये सब पुरुष जाति कृष्ण र सखार समान, ये सब तो कृष्ण के जाति के है, पुरुष जाति के है, इन्हें स्त्री की वेदना क्या पता, ये कैसे बताएंगे, छोड़ो इनको पूछ के कुछ फायदा नहीं है, चलो आगे चलते हैं। हमारी स्त्री जाति की कोई है यहाँ पे? हाँ, वो लताएं दिख रही है, चलो उनको पूछते हैं। एक ने कही बे कृष्ण र उद्देश्य अमाय, ए स्त्री जाति लता अमार सखी प्राय, ये स्त्री जाति वाली लताएं हैं, ये बता सकती है हमें कृष्ण कहाँ है। तुलसी मालती युथी माधवी मल्लिके, तुमार प्रिय कृष्ण आईला तुमार अंतिके, हे तुलसी, हे मालती, हे युथी, हे मल्लिके, हे माधवी, क्या आपने देखा यहां से कृष्ण को जाते हुए देखा आपने? फिर भी उन्हें जो है वो उत्तर नहीं मिलता है, तो गोपियां क्या अनुमान लगाती है? उत्तर न पाइया पुनः भावे न अंतरे, एह कृष्ण दासी भय ना कोहे आ मारे, ये तो कृष्ण की दासियां हैं, भय है यदि बता देंगे तो डर के मारे ये लताएं भी नहीं बता रही है। हालांकि स्त्री जाति की है लेकिन कृष्ण की साइड की है इसलिए हमें नहीं बता रही है। फिर अचानक उन्हें जो है वो उन गोपियों को जो ढूंढ रही है, कृष्ण का गंध उनके नासिका में प्रवेश कर जाता है और वो देखती है कि दूर से कोई मुर्गियां मतलब हिरण जो है वो जा रहे हैं और उन हिरणों की तरफ वो भागते 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 जाती है। आगे मुर्गी गण देखी कृष्णांग गंध पाइया, तार मुख देखी पूछे निर्णय करिया, शायद ये हमें बता सकते हैं कि कृष्ण कहाँ गए क्योंकि अभी अभी हमने कृष्ण का गंध लिया हुआ है और इन्होंने इनके अंदर भी कस्तूरी होती है तो इनका गंध और गंध का मैच हो गया होगा, इनको समझ में आ गया होगा कृष्ण आ रहे हैं, चलो इन्हें पूछते हैं। कह मृगी राधा सह श्री कृष्ण सर्वथा, तुम्हारी सुख दिथे आईला नाहीक अन्यथा, कि बताओ बताओ हे मृगीगण, क्या आपने देखा अपने लंबी लंबी आंखों से क्या कृष्ण राधारणी को लेकर यहां से गए हैं? बताओ 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 गए हैं? कुछ उत्तर नहीं मिलता है, कुछ उत्तर नहीं मिलता है। तो गोपियां अनुमान लगाती, अरे कितनी पगली है हम लोग, ये भी तो हमारी जैसी विरहिणी है, देखो देखो इनके हमारे शब्द इनके कान के ऊपर गिर ही नहीं रहे क्योंकि इनको भी कृष्ण का विरह हो रहा है। कृष्ण यहाँ छाड़ी गेला इहो विरहिणी, किबा उत्तर दिबे ए नाशुने काहिनी, कुछ भी इन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, ये क्या उत्तर दे सकती है हमारे, ये भी उत्तर नहीं दे सकती है। देखो देखो वो वृक्ष अपने फूल के साथ झुक रहे हैं, फल के साथ झुक रहे हैं, शायद कृष्ण अभी यहां से गए होंगे और इन्होंने कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया होगा झुककर और अभी तक उठे नहीं होंगे, तो चलो इनको पूछते हैं। आगे वृक्ष गण देखे पुष्प फल भरे, शाखा सब पड़िया छे पृथ्वी ऊपर, पृथ्वी के ऊपर इनकी शाखाएं झुकी हुई थी और गोपियां जा रही है। सबसे पहले उन्होंने वृक्षों को पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, वेलियों को पूछा स्त्री जाति की समझ के, उन्होंने भी नहीं कहा कुछ जवाब दिया, फिर मृगियों को पूछा, उन्होंने उन्होंने भी कुछ जवाब नहीं दिया, तो ये कही कि ये भी हमारी जैसी विरहिणी है और हमारे शब्द उनके कानों में जा ही नहीं रहे हैं। और जब वो देखती है कि कुछ वृक्ष फल फूलित हुए हुए वो जमीन पर झुके हुए हैं तो शायद ये कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, ये तो कुछ बता सकते हैं। कृष्ण देखी यही सब करे न नमस्कार, कृष्ण गमन पूछे तारे करिया निर्धार, चलो चलो इनको पूछते हैं, ये कृष्ण को अभी जो है वो प्रणाम कर रहे होंगे। तुम्हारे प्रणाम की कैरा छेन अवधान, की बा नहीं करेन कह वचन प्रमाण, कि आपने जब दंडवत प्रणाम किया कृष्ण को, क्या क्या आपने देखा होगा, अवधान होगा, आप सचेत थे कि कृष्ण कहां किस दिशा में जा रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं, कृपया बताइए। कृष्ण रो वियोगे ए सेवक दुखित, किबा उत्तर दिबे इहार नहीं कसमवित, अरे इनको भी जो है वो कुछ पता नहीं है, ज्ञान नहीं है क्योंकि ये भी विरह महसूस कर रहे हैं कृष्ण का और इसलिए अभी तक झुके हुए हैं, उठे भी नहीं है प्रणाम करके। अभी ये तो बली आगे चले यमुना रकुले, देखे तहा कृष्ण है या कदम बेरा तले, ऐसा चलते की चलते गोपियां और आगे जाती है और यमुना कुले यमुना के तट पर जो है वो कृष्ण को कदम्ब पेड़ के नीचे बैठी हुई देखती है और आ क्या कृष्ण का सौंदर्य, कोटि मनमत मोहन मुरली वदन, अपार सौंदर्य हरे जगन्नेत्र मन, कोटि मनमथ कोटि कोटि कामदेव को पराजित करने वाला हमारे मुरली वदन मदन मोहन अपर सौंदर्य हरे जगन नेत्र मन, सारे जगत के नेत्र सारे जगत के मन को वो हरण कर लेते हैं। सौंदर्य देखिया भूमे पड़े मूर्छा पाइया हेन काले स्वरूपादि मिली ले आसिया, वो कृष्ण के रूप को देख रहे हैं। आप हैं हमारे साथ, कहां थे? महाप्रभु समुद्र स्नान के लिए जा रहे थे लेकिन पुष्पोद्यान देख के उसके अंदर प्रवेश कर गए थे और इस प्रकार से गोपियों के भाव में वो गए और कृष्ण को उन्होंने अभी देखा है और मूर्छित हो जाके गिर जाते हैं और वहीं पे स्वरूप दामोदर और वो अभी आ जाते हैं। तो वो सारे महाप्रभु को चेतन करने का प्रयास करते है, कोई पंखा चला रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, इस प्रकार से महाप्रभु चेतन अवस्था में आ जाते हैं और जब उठते हैं तुरंत यहां वहां देखते हैं कहां गए कृष्ण, कहां गए कृष्ण, कहां गेला कृष्ण, एकनी पाइनु दर्शन तहां सौंदर्य मोर हरिले नेत्र मन, मेरे नेत्र और मेरे मन को हरण कर लिया है कृष्ण ने, कहां है कृष्ण, कहां कहां मिलेंगे। पुनः केने ना देखिए मुरली वदन तहार दर्शन लोभे भ्रम नयन, मैं अभी पुनः देख पाऊंगी कि नहीं, कहा मेरे नयन यहां वहां ढूंढ रहे कृष्ण को, कहां गए कृष्ण। विषा खेरे राधा ये चे श्लोक कहिला से श्लोक महाप्रभु पड़ी ते लागिला, राधा रानी ने विशाखा को इस प्रकार से जब कृष्ण उनके आंखों से ओझल हो गए तो उन्होंने विशाखा देवी को जो श्लोक कहा वही श्लोक महाप्रभु उनको सुनाते हैं और कृष्ण के माधुर्य और सौंदर्य का वर्णन करते हैं। नव घन स्निग्ध वर्ण दलितांजन चिक्कन इंदिवर निंदी सुकोमल जिनी उपमान गण हरे सवार नेत्र मन कृष्ण कांति परम प्रबल। नव घन स्निग्ध वर्ण मानो नए आए हुए बादल के समान उनका रंग है। दलित अंजन चिकना मतलब जो चिकना अंजन जो है उसे चूरा किया हुआ है उस प्रकार से चमकता हुआ उनका कांति है। इंदिवर निंदी सुकुमल, इंदिवर का अर्थ होता है नीला कमल, वही नीलोत्पल, नीले कमल से भी और सुकुमल इनका जो है वो शरीर है। जिनी उपमान गण सारे उपमाओं के सामने सारे उपमा उनके सामने तुच्छ हो जाती है। हरे सबार नेत्र मन सबके नेत्र और मन को हरण कर लेते हैं। कृष्ण कांति परम प्रबल ऐसा है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कांति। अभी राधा रानी एक उदाहरण देती है कृष्ण किस प्रकार से बादल के समान है और सारे बादल की उपमा आगे 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 बढ़ती जाएगी। कह सुखी की करी उपाय, हे सखी आप उपाय बताओ मैं क्या करूं। कृष्ण अद्भुत बलाहक मोर नेत्र चातक ना देखी पिया से मरियाय। कृष्ण जो है वो बादल के समान है, मेरी दो आंखें एक चातक के समान है। चातक केवल स्वाति नक्षत्र के बारिश की बूंदों के ऊपर आधारित रहता है उसका जीवन, बाकी कहीं का जल नहीं पीता। उस प्रकार से मेरे आंखें चातक के समान है और कृष्ण उस बादल के समान है। यदि उस बादल का जो बरसता हुआ पानी यदि मेरे आंखों में नहीं जाएगा तो ये चातक पक्षी मर जाएगा। कुछ उपाय बताओ क्या करूं। और इस बादल में अभी क्या है, बादल होते हैं तो बिजली भी चमकती है। सौदा मिनी पीतंबर स्थिर नहे निरंतर मुक्ताहार बक पाती भाल। इंद्र धनुषी की पाखा ऊपर यदि याचे देखा आर धनु वैजयंती माल। कितना अद्भुत सौंदर्य का वर्णन है कृष्ण का। सौदामिनी पीताम्बर, जो पीताम्बर है उस बादल में पीताम्बर क्या है, सौदामिनी मतलब बिजली के जैसा है, स्थिर न है निरंतर, बिजली चमकती है आ जाती है चमकती हुई। मुक्ताहार बकम पाती भाल, जो आकाश अभी बादल के साथ तुलना की है तो जो बादल में हम लोग देखते हैं कि सफेद जो है वो बक का अर्थ होता है बगला, बगले पंक्तियों में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार से बगलों की पंक्तियां मतलब वो जो मुक्तहार कृष्ण ने जो हार पहना हुआ है वो मानो बादल के ऊपर बगलों की जो है वो पंक्ति चल रही है। इंद्रधनुष की पाखा, और बादल में इंद्रधनुष भी दिखता है तो एक इंद्रधनुष हमें दिखाई दिया, क्या है वो, भगवान ने लगाया हुआ शिकी पाखा मोर पंख। ऊपर दिया चे देखा अर धनु वैजयंती माला, और दूसरा इंद्रधनुष है उनकी वैजयंती माला। तो इस प्रकार से जो है वो बिजली भी दिखाई दी पीतंबर के रूप में और इंद्रधनुष भी दिखाई देगा वो उनका मोरपंख और वैजयंती माला के रूप में। और जो अभी गर्जना होगी बादलों की वो क्या है, मुरली रकल ध्वनि मधुर गर्जन सुनी वृंदावने नाचे मयूर चय। अकलंक पूर्ण कल लावण्य ज्योत्सना झलमल चित्र चंद्रेर ताहते उदय। ये विचित्र चंद्र का अभी यहाँ पे उदय हुआ है बादलों में, क्या है सबसे पहले बादलों की गर्जना कौन सी है, कौन सी, मधुर गर्जन सुनी, क्या है, मुरली कल ध्वनि, मुरली की ध्वनि जो है वो बिल्कुल जो है वो बादलों की जो गर्जना है उसके समान है, और जब उसे सुनते हैं तो वृंदावन नाचे मयूर च, वृंदावन के मयूर जो है वो ध्वनि को सुन के नाचने लगते हैं। और ये चंद्रमा जो है वो कैसे उदित हुआ है, अकलंक पूर्ण कला, जो चंद्रा होता है हमारा इस संसार का उसे कलाएं लगती है, मतलब वो कम होता है बढ़ता है, और उसमें कितने सारे दाग धब्बे भी होते हैं, काला कलंक होते हैं, तो ये जो चंद्र आया है ये बिल्कुल अकलंक है और पूर्ण कला है, पूर्णिमा का पूर्ण चांद के समान लावण्य ज्योत्सना झलमल, इस प्रकार से जो उनका लावण्य चमक रहा है। और जो चंद्रमा होता है और जो बादल है वो कुछ वर्षा भी करते हैं, ये बादल कृष्ण का कौन सी वर्षा कर रहा है, लीलामृत वरिषणे सिंचे चौदह भुवने हेन मेघ यबे देख दीला, ये लीलामृत कृष्ण लीला की वर्षा कर रहा है और जो सारे चौदह भुवन का जो है वो सिंचन करके उन्हें जो है वो बल दे सकता है, हेन मेघ यबे देख दीला, ये इस मेघ को मैंने अभी देखा है लेकिन मेरा क्या दुर्भाग्य, दुर्दैव झंझा पवने मेघ नील अन्य स्थाने मरे चातक पीते न पाईल, मेरा चातक पी रहा था लेकिन क्या हो गया, दुर्दैव से एक हवा का झोंका आया और उस बादल को यहां से कहीं और अन्य स्थान पर लेके गया और मरे चातक पीते न पाईल, चातक ने पूरी रूप से पिया भी नहीं और चातक जो है वो मर रहा है। पुनः कहे हाय हाय पड़ पड़ राम राय कहे प्रभु गदगद आख्याने, रामानंद पड़े श्लोक सुनी प्रभु हर्ष शोक आपने प्रभु करे न व्याख्याने, महाप्रभु कहते हाय हाय हे रामानंद राय पढ़ो पढ़ो कुछ तो पढ़ो, मैं बोल नहीं पा रहा हूं अभी, तो इस प्रकार से भी रामानंद राय श्लोक बोलते थे और महाप्रभु जो है वो सुना करते थे। तो रामानंद राय अभी श्रीमद भागवत का एक श्लोक बताते हैं और उसमें जो जैसे श्रीमती राधारानी गोपिकाओं को बता रही है उसकी व्यथा, और अभी कृष्ण की तुलना कर रहे हैं, पहले बादल से की थी अभी कृष्ण की तुलना कर रहे हैं एक शिकारी से जो किस प्रकार से आकर्षित कर लेता है और बाद में वध कर देता है पशु पक्षियों का। कृष्ण जी ने पद्मचान पति आछे मुख फांद ताते अधर मधुस्मित चार, व्रजनारी आसी आसी फांदे पड़े होय दासी छाड़ी लाज पति घर द्वार। कृष्ण जिनी पद्म चांद, कृष्ण ने तो अभी जो है वो पद्म यानी कमल को और चांद यानी चंद्रमा को, कमल और चंद्रमा को तो कृष्ण ने जीत लिया है, अभी क्या है पातियाचे मुख फांद, तो अभी उन्होंने अपना मुख कमल रूपी एक फंदा एक फांस डाल के रखा है, जैसा हम लोग पिंजड़ा रखते हैं और पिंजड़े के अंदर कुछ अच्छी वस्तु, चूहे को पकड़ना है तो कुछ उसमें पकोड़ा या कुछ ब्रेड रख देते हैं और चूहा आके आकर्षित होकर उसे खा लेता है और फंस जाता है, तो उस प्रकार से कृष्ण ने अभी क्या किया है अपना फंदा रखा है, अपने मुख कमल रूपी फंदा रखा हुआ है, पतियाचे मुख का फंदा ताते अधर मधुस्मित चारा, और उसमें चारा क्या है उनकी मधुर स्मित हंसी जो है वो चारे के समान है। व्रज नारी आसी आसी फंदे पड़ी होय दासी, व्रज नारी आके उसके अंदर जो है वो फंदे में फंस जाती है और गिर जाती है। छाड़ी लाज पति घर द्वार, और सारी लज्जा छोड़ के अपने पतियों का घरदार छोड़ के यहाँ पे व्रजांगनाएं आ जाती है। बांधव कृष्ण करे व्याधेर आचार, और कृष्ण जो है वो व्याध मतलब शिकारी जी का जैसा आचरण करते है। नाही माने धर्मा धर्म हरे नारी मृगी मर्म करे नाना उपाय तहार, ये कृष्ण जो है वो क्या धर्म है क्या धर्म है इसको बिल्कुल नहीं जानते हैं और जो मुर्गियां मुर्गियों के रूप में जो नारियां आ रही है उनका जो है वो वध कर देते हैं। गंड स्थल झलमल नाचे मकर कुंडल से नृत्य हरे नारी चय, सस्मित कटाक्ष बाणे तास बार हृदय हाने नारी वदे नाही किछु भय। गंडस्थल उनके जो गाल है वो चमक रहे हैं, झलमल नाचे मकर कुंडल और कान के कुंडल जो है वो उस चमकते हुए गालों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं और शोभायमान हो रहे हैं। सही नृत्य हरे नारी च, ये सारे नारियों के मन को वो ये दृश्य हरण कर लेता है और उस जब नारियां आ जाती है तो क्या हो जाता है सुस्मित कटाक्ष बाणे, कृष्ण का कटाक्ष जो है और सुस्मित स्मित के साथ उनके कटाक्ष जो है वो सबार हृदय हाते, सारे हृदयों में जो है वो मानो तीर के जैसे लग जाते हैं। नारी वदे नाही किछु भय, इस प्रकार से नारियों का वध कर देते हैं और इन्हें जो है वो कुछ भी भय नहीं है। अभी कृष्ण के अंग का वर्णन स्पर्श उनका किस प्रकार से है। कृष्ण कर पद तल कोटि चंद्र सुशीतल जिनी कर्पूर वेणा मूल चंदन, एक बार यार स्पर्शे स्मर ज्वाला विष नाशे यार स्पर्शे लुब्ध नारी मान। कृष्ण कर पद तल, भगवान कृष्ण के हस्तकमल और उनके चरण कमल किस प्रकार से है, कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि कोटि चंद्रमाओं से भी सुशीतल है। जिनी कर्पूर वेणा मूल चंदन, वेणा मूल मतलब खसखस के मूल, तो खसखस के मूल चंदन और कर्पूर इन तीनों को ठंडा कहा जाता है, शीतल कहा जाता है। इनकी शीतलता को मात दे रहे भगवान श्री कृष्ण के हस्त और चरण कमलों का स्पर्श। एक बार यार स्पर्शे स्मर ज्वाला विष नाशे, जो एक बार इनके दिव्य स्पर्श का अनुभव कर लेता है सारी कामनाएं और विष जो है उनका नाश हो जाता है, और इसका स्पर्श का अनुभव करने के लिए सारी नारियां जो है वो भाग रही है। एते कविलाप करी प्रेमा वेशे गौर हरी, यही अर्थे पड़े एक श्लोक, सही श्लोक पढ़ी राधा विषा खेर कहे बाधा उद्गाड़ी या हृदय शोक। इस प्रकार से प्रेमावेश में गौर हरि चैतन्य महाप्रभु अन्य अन्य श्लोक और एक पढ़ते हैं जो श्रीमती राधा रानी ने विशाखा को अपनी व्यथा का वर्णन करने के लिए कहा था। प्रभु कहे कृष्ण मुई एखन ए पाइनो अपनार दुर्दवे पुनः राइनो, मुझे कृष्ण मिले थे लेकिन दुर्दवे के कारण मैंने पुनः उन्हें जो है वो खो दिया है। चंचल स्वभाव कृष्णेर न रह एक स्थाने, देखा दिया मनोहरी करे अंतरधाने। देखो विशाखा, कृष्ण का स्वभाव है जो बिल्कुल चंचल रहता है, वो अचानक प्रकट हो जाते हैं, मन को आकर्षित कर लेते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। बिल्कुल इनके ऊपर जो है वो विश्वास नहीं रखना चाहिए। स्वरूप गोसाई र कहेन गाओ एक गीत, याते आमार हृदय होए त संवित, अरे मेरा हृदय सचेत हो जाए, कुछ अच्छा बन जाए, ऐसा कोई गीत गाओ। स्वरूप दामोदर को कहते हैं और स्वरूप दामोदर गाते हैं गीत गोविंद का एक श्लोक। रासे हरिम इह विहित विलासम स्मरति मनो मम कृत परिहासम, गीत गोविंद का एक श्लोक है। यहाँ रास नृत्य के स्थल में मैं कृष्ण का स्मरण करती हूँ, जिन्हें परिहास करना तथा लीलाएं करना अत्यंत प्रिय है, उनका मैं स्मरण करती हूँ। रूप गोसाई यबे ए पद गाईला, उठी प्रेमावेश प्रभु नाचिते लागीला। तो महाप्रभु जब यह पद सुनते हैं तो उठकर जो है वो नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं और सारे अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में प्रकट हो जाते हैं और महाप्रभु कहते हैं पुनः गाओ सही पद पुनः पुनः कराय गायन पुनः पुनः आस्वादय करेन नर्तन। पुनः पुनः महाप्रभु उसका आस्वादन कर रहे हैं, स्वरूप दामोदर गाए जा रहे हैं, महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं और नाचते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं। लेकिन नाचते नाचते महाप्रभु जो है वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। ऐ मत नृत्य यदि हैल बहु क्षण, स्वरूप गोसाई पद कैला समापन, बहुत हो गया, महाप्रभु थक गए, स्वरूप दामोदर जान लेते हैं और स्वरूप दामोदर जो है वो समापन वो अभी नहीं गाते हैं। बल बल बलि प्रभु कहे न बार बार, ना गाये स्वरूप गोसाई श्रम देखी तार। महाप्रभु वापस बोल रहे बोलो बोलो बोलो, लेकिन फिर भी स्वरूप दामोदर अभी नहीं गा रहे हैं क्योंकि श्रम देखी तार, महाप्रभु का जो कितना श्रम हो रहा है महाप्रभु को वो देख के वो शांत बैठ जाते हैं। लेकिन बाकी सब भक्त महाप्रभु जब बल बल बोल रहे थे तो ये बाकी सब भक्त कृष्ण का कीर्तन जोर से चालू कर देते हैं। बल बल प्रभु बलेन भक्त गण सुनी, चौदी के सबे मेली करे हरे ध्वनि। इस प्रकार से 14 भुवन को डुबाने वाली भगवान हरि की दिव्य ध्वनि वहां पर जो है वो शुरू हो जाती है। फिर महाप्रभु थोड़े शांत हो जाते हैं और फिर चामर व्यजन मोरपंख आदि लगाया जाता है, महाप्रभु का जो है वो शांत किया जाता है। और फिर अभी कहाँ पर थे हम लोग, अभी तक पुष्प उद्यान में थे, तो महाप्रभु को फिर समुद्र तीर पर लेके जाया जाता है। समुद्र में महाप्रभु को जो सारे स्नान कराते हैं, घर पर लाया जाता है, सारे भक्त भोजन कर लेते हैं और महाप्रभु को फिर जो है वो अच्छे से शयन कराया जाता है। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एत कहिलु प्रभुर उद्यान विहार वृंदावन भ्रमेयः प्रवेश तहार। इस प्रकार से मैंने जो है वो महाप्रभु का पुष्पोद्यान में भ्रमण और उनका वृंदावन का स्मरण और भ्रमण उसका जो है मैंने वर्णन किया हुआ है। प्रलाप सहित ए उन्माद वर्णन श्री रूप गोस्वामी इहां करिया छेन वर्णन। रूप गोस्वामी ने इनके उन्माद और प्रलाप का वर्णन जो है वो उनका एक ग्रंथ है, रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा हुआ है जिसका शीर्षक है स्तवमाला। तो स्तवमाला में जो है वो ये सारा वर्णन को उन्होंने संस्कृत के श्लोकों के आधार पे जो है वो वर्णन किया हुआ है। इस प्रकार से अनंत लीलाएं श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो दिव्य विलाप के साथ जो है वो किया करते थे और रामानंद राय और स्वरूप दामोदर अलग अलग जो है वो भाव, वो महाप्रभु का भाव समझ के अलग अलग गीत इस प्रकार से सुनाया करते थे और महाप्रभु को सांत्वना दिया करते थे। और इसी विलाप में महाप्रभु निरंतर जो है वो आगे के कई वर्ष तक जगन्नाथपुरी में निवास किए। अनंत चैतन्य लीला नायाय लिखन दिक मात्र देखा तहा करिए सूचन। इस प्रकार से मैं जो हूं वो केवल दिग्दर्शन, मतलब जो है वो केवल आपको दिखा रहा हूं कि ऐसी लीला है, ऐसी कई सारे अनंत लीला नायाय लिखन, अनंत लीला है जिनका लिखान नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं केवल जो है वो दिग्दर्शन, केवल संकेत मात्र आप लोगों को बता रहा हूं, सुना रहा हूं। आप इसे श्रद्धा पूर्वक सुनिए, जिससे भगवान के प्रति दिव्य प्रेम जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो ये हो गया हमारा अध्याय 15। तो अभी यहां पर हम लोग विराम देंगे, क्योंकि कल हमारी जो मोस्ट अवेटेड, जिसे कह रहे थे सब भक्त, चैतन्य चरितामृत कॉन्टेस्ट आदि लीला की, उसका नियोजन किया गया है। तो शाम को ठीक 6 बजे वो शुरू होगी। और सबसे पहले मैं आज के सवाल का जवाब दे देता हूं, फिर मैं आपको कुछ सूचना दूंगा कल के परीक्षा के बारे में। कई भक्त आज का सवाल को लेकर बहुत उद्विग्न भी थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे कह रहे थे, क्योंकि ये समझ के ऊपर आधारित है। तो एक श्लोक हमने दिया था, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरु वैष्णवम श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हम लोग नित्य रूप से गाते हैं। वास्तव में श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनके द्वारा रचित है। तो इतना सुंदर श्लोक हम लोग रोज गाते हैं, प्रवचन के पहले गाते हैं, मंगलाचरण में गाते हैं। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, इन्होंने खुद इसकी रचना की है। तो हमने पूछा था, जो हम लोग प्रणाम करते हैं तो इन प्रणाम मंत्रों में ये कौन सा प्रणाम है? सामान्य प्रणाम, विशेष प्रणाम, दंडवत प्रणाम और उपरोक्त तो कुछ भी नहीं। तो आदि लीला के पहले 2 श्लोक हमने आपको याद करने के लिए दिए है। सबसे पहला श्लोक जो है वो सामान्य प्रणाम है। क्या है पहला श्लोक, याद है? वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य सम्यगम। तो अलग अलग तत्वों को कविराज गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं। तो जब अलग 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 तत्वों को प्रणाम किया जाता है तो वो सामान्य प्रणाम होता है, और जो केवल एक स्पेसिफिक प्रणाम होता है, एक स्पेसिफिक, हाँ, विशिष्ट विशिष्ट जो प्रणाम किया जाता है उसे विशेष प्रणाम कहते हैं। और जो दूसरा श्लोक, उसमें केवल चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया हुआ है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित गौड़ोदय पुष्पवंत चित्र शमदौ तमोनदौ। तो इस प्रकार से केवल चैतन्य और नित्यानंद को प्रणाम किया है, वो विशेष प्रणाम है। कविराज गोस्वामी स्वयं बताते हैं, आदिलीला में आपने पढ़ा होगा कि पहला श्लोक जो है वो सामान्य प्रणाम है, दूसरा श्लोक विशेष प्रणाम है। और हमने ये पहले अध्याय के प्रवचन में भी सुना था। तो आपको यह केवल उदाहरण मात्र दिया गया था कि दूसरा श्लोक यदि आपको दिया जाए तो आपको कितना स्मरण होता है कि यह सामान्य प्रणाम है कि विशेष प्रणाम है। जब बाकी अन्य कई सारे तत्वों को एकत्रित प्रणाम किया जाता है तब वो सामान्य प्रणाम कहा जाता है, और जब केवल एक या दो विशेष तत्वों को विशेष रूप से प्रणाम किया जाता है तो उसे विशेष प्रणाम कहते हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ये श्रीमती राधारणी का विशेष प्रणाम है। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ये कृष्ण को विशेष प्रणाम है। तो आज का जो श्लोक था इसमें गुरु, सारे वैष्णव, सारे गोस्वामी, कई सारे तत्वों को प्रणाम है। इसलिए जो श्लोक है आज का, जो हमने प्रश्न में पूछा था, वो जो है वो सामान्य प्रणाम है। उसका आंसर ए रहेगा। तो आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल आपको आपका उत्साह बढ़ाने के लिए कि आप आप अच्छे से पढ़िए, इसके लिए हमने ये प्रश्न दिया था। ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कल के प्रश्न जो है वो, क्योंकि चैतन्य चरितामृत के ऊपर है, चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्याय अवतार है, इसलिए ज्यादा मात्रा में आसान रहने वाले है। लेकिन थोड़े तो प्रश्न रहेंगे, क्योंकि महाप्रभु ने अपनी कठोरता भी दिखाई थी। छोटा हरिदास को रिजेक्ट किया था, तो थोड़ा कठोर गुण महाप्रभु में थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे। तो इसलिए कुछ कठोर प्रश्न तो रखने ही होंगे, तो रखे हैं हमने। तो ये जो है वो शाम को ठीक 6 बजे शुरू हो जाएगी परीक्षा। आपको प्रश्न होगा कि फिर हमारा जो 5:30 से 6:30 का सत्र, इसलिए वो कल नहीं होगा। उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कल का सत्र नहीं होगा, केवल परीक्षा होगी। आज हम आपको जल्दी भी छोड़ने वाले थे लेकिन बीच में लाइट चली गई, तो इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। तो 6 से 7 प्रश्न रहेंगे, ऑनलाइन आपको इसे देना है। मोबाइल में देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग आपको प्रेफरेंस देना चाहेंगे आप इसे सिस्टम पे दीजिए, मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर रहेगा। तो उसमें क्या होता है, एक ही पेज में सारे 70 प्रश्न आपको दिखने वाले हैं और जब स्क्रॉल करना ऊपर नीचे होना आपको आसान जाएगा। तो यदि आप जो लिंक आपको कल भेजी जाएगी वो निष्क्रिय रहेगी सुबह भेजी जाएगी, तो ये सक्रिय हो जाएगी शाम को ठीक 6 बजे। तो जब सक्रिय हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, उस लिंक को एक तो आपके ईमेल पे भेज के रखिए और ईमेल के द्वारा आप कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर में देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें बाद में हमने ये देखा है कि एडवर्टाइज भी लास्ट में आती है लेकिन कम आती है। और दूसरा है कि मोबाइल में भी आप दे सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन मोबाइल में क्या व्हाट्सएप चालू रहता है, दूसरे सारे कई सारे विघ्न उसमें आते रहते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर में उसे लाने का, व्हाट्सएप वेब करके एक एप्लीकेशन आता है, वो आप यदि वेबसाइट में व्हाट्सएप वेब टाइप करेंगे तो आपका मोबाइल आप कंप्यूटर के स्क्रीन के साथ सिंक करके आपका व्हाट्सएप आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे दिखेगा, वो लिंक आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आप वहां पर भी जो फॉर्म पा सकते हैं, तो उस पर आप क्लिक कीजिए और कंप्यूटर पे आप सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा हमारा सुझाव है। नहीं है तो मोबाइल पे भी चल सकता है, कई भक्तों ने मोबाइल पे मॉक टेस्ट भी दी थी तो आपको अभी अंदाजा आ गया होगा। तो 70 प्रश्न है, काफी आसान है, 1 घंटा बहुत समय है। मैंने स्वयं यह परीक्षा दी थी तो केवल 15 मिनट में सारे 70 प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं आपके। तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप भागा दौड़ी मत कीजिए कुछ है तो कुछ है क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आधे घंटे में आपका भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आखिर में आप सबमिट करना मत भूलिए, कुछ भी हो जाए, और सारे प्रश्न कंपलसरी आपको, किसी का जवाब नहीं आ रहा है तो आपका आपके जनरल नॉलेज कॉमन सेंस जो पढ़ा है जो सुना है ये न के न प्रकार आप उसका उत्तर आप दे दीजिए। और उत्तर देने के लिए आप किसी अन्य उपायों का मदद मत लीजिए। क्या है ना कि आपके पास समय तो है, समय रहेगा तो फिर कुछ लोग वेदाबेस खोलेंगे, चलो देखते वेदाबेस में, चलो देखते इंटरनेट पे कुछ मिलता है क्या, चलो बुक खोल के देखते हैं थोड़ा समय है तो मेरा जवाब सही है क्या। तो ऐसे अन्य उपकरण अन्य साधनों का प्रयोग आप मत कीजिए, इसे कहते हैं सेल्फ इंटीग्रिटी। क्योंकि हम लोग तो परीक्षण करने के लिए वहां पर सुपरवाइजर वगैरह नहीं आ सकते, लेकिन परमात्मा सब कुछ देख रहा है, इसे हमें जो है वो अवगत होना चाहिए। तो परमात्मा समझ जाएगा कि क्या है, किस प्रकार से चल रहा है। तो परमात्मा को साक्षी रख के आप जो है वो अपनी अपनी जो प्रश्न पत्रिका है उसके जवाब दीजिए। बिल्कुल आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, समय भी काफी रहेगा, प्रश्न भी आसान रहेंगे और आपको मार्क्स भी जैसे मॉक टेस्ट में मिले थे वैसे ही मार्क 1 घंटे के बाद आपको तुरंत सारे मार्क्स जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलना है वो सब जो है वो मिल जाएगा। और जिसका आप राह देखते हैं आंसर की, वो भी हम आपको एक आध दिन के बाद जो है वो उसकी आंसर की भी हम लोग आपको जो है वो दे देंगे। तो इस प्रकार से कल 6 से 7 हमारा एग्जाम रहेगा। कल का चैतन्य चरितामृत का हमारा नित्य सत्र नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखिए, लेकिन कल रविवार है, सोमवार को हमारा नित्य सत्र पुनः चालू हो जाएगा शाम को 5:30 बजे। हमारे अंत्य लीला के अभी केवल 5 अध्याय शेष है, तो हमारा मानस है उन्हें भी हम लोग अच्छे से जो है वो पूरा करें और 3-4 दिन के अंदर हमारे वो अध्याय भी जो है वो पूर्ण हो जाएंगे। तो आप बने रहिए, पूरा अंत्य लीला हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मिलेंगे हम कल एग्जाम के लिए 6 बजे शाम को और अगला चैतन्य चरितामृत के सत्र के लिए सोमवार को 5:30 बजे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की, श्रील प्रभुपाद की जय हो।